प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 3 जनवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में अभी हम फिलहाल जो दंगल फिल्म पर बात कर रहे हैं उसी के अगले बिंदु की चर्चा करेंगे और यह जो आज का अगला बिंदु मैंने आप सबके लिए चुना है वह है प्रतिरोध बनाम प्रतिशोध। आज हम इस पॉइंट पर इस बिंदु पर बात करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा भाव है एक ऐसा इमोशन है या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा थॉट्स है जो हम सबके अंदर हमेशा मौजूद रहता है। अब सवाल केवल यह है कि कैसे हम इसका एक बहुत ही सटीक और सकारात्मक या यू कह लीजिए कि अपने हित में इस्तेमाल कर सके। दोस्तों दंगल फिल्म आप लोगों ने अगर देखी है तो याद करने की कोशिश कीजिए कि उस पूरी की पूरी फिल्म में ऐसे कौन से स्थान हैं कौन से बिंदु हैं जहां पर प्रतिरोध की भावना दिखाई देती है और साथ ही साथ प्रतिशोध की भी भावना दिखाई देती है। देखिए प्रतिरोध का तो मतलब है कि जब आपका विरोध किया जा रहा है ना रास्ता रोका जा रहा है। प्रतिशोध का मतलब है कि जब आप किसी से चिढ़कर ईर्ष्यालु होकर या आहत होकर के उससे बदला लेना चाहते हैं आप जिसको कह लीजिए कि बदला चुकाना चाहते हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों स्थितियों को याद करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड जैसा कि मैंने कहा था कि जो दंगल है वो ठीक है कि वो अखाड़े का अर्थ दे रहा है वो फिल्म में अखाड़े से ही मतलब है लेकिन इनफैक्ट जो दंगल फिल्म है वो एक तरीके से पूरी जिंदगी पर बनाई गई फिल्म है और यही कला की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी ताकत भी होती है। दोस्तों जो प्रतिरोध की जब बात आती है तो मैंने अक्सर लोगों को परेशान होते हुए देखा है। लोग जब ऐसी स्थिति जब विपरीत स्थितियों से जूझते हैं तो आम तौर पर बड़े आसानी से उनके मुंह से ये निकलता है कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे इस जन्म में तो हमने कोई पाप किया नहीं है हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है हम तो हमेशा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं लेकिन पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया बहुत बुरी है दुनिया को दूसरे का हित दूसरे का सुख बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता है सारी सारी बातें हम करने लगते हैं। मित्रों ये सब के सब सच पूछिए तो कभी न कभी कहीं न कहीं मुझे एक तरह से बहुत ही भावनात्मक वक्तव्य लगते हैं या अनजाने में कह दी गई बातें लगती हैं या यूं कह लीजिए कि चूंकि कुछ कहना है इसलिए कह दी गई बातें लगती हैं। मित्रों इसका कोई संबंध न तो आपके बुरे कर्मों से है न आपके भाग्य से है और न आपकी भलाई और बुराई से है। देखिए कर्म का जहां तक सिद्धांत का सवाल है अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलेंगे वो इसी जन्म में है बट नेचुरली कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। जब आप किसी की तारीफ करेंगे किसी की प्रशंसा करेंगे तो आपको उससे मदद ही मिलेगी। जब आप किसी को चांटा मारेंगे किसी को गाली गलौज करेंगे तो बदले में आपको कैसे अच्छा मिल सकता है। उस रूप में तो कर्म का सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट होता है लेकिन पिछले जन्म और फलाना जन्म और अगले जन्म भगवान जाने ये क्या है कम से कम मेरी जानकारी में तो मित्रों नहीं है। तो मित्रों जो अगर हम जो प्रतिरोध हमारे सामने जो आते हैं यदि हम इन्हें अपने जीवन का सत्य स्वीकार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि तुरंत अचानक इमीडिएट प्रतिरोध के प्रति आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। यूं कह लीजिए कि प्रतिरोध जो आपका हो रहा है उससे आप प्यार करने लगेंगे उससे आपको मोहब्बत हो जाएगी। हम जब ये मान लेते हैं कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है और मुझे अच्छा ही अच्छा चाहिए तब हमें वो जो प्रतिरोध है वो अपना दुश्मन दिखाई देने लगता है। अदरवाइज प्रतिरोध जीवन का एक दूसरा पक्ष है अनिवार्य पक्ष है और ये जो दूसरा पक्ष है याद रखिए ये पहले पक्ष का ही दूसरा पक्ष है ये उससे अलग नहीं है क्योंकि यदि यह पहला पक्ष है तो यह दूसरा पक्ष भी ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से कि अगर कोई सिक्का है तो उसका एक भाग है तो उसका दूसरा भाग भी होगा बिना दूसरे भाग के पहले भाग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो प्रतिरोध तो मित्रों होगा ही, प्रतिरोध जो है समाज का और प्रकृति का मुझे लगता है कि परीक्षा लेने का अपना एक तरीका है। आप अब तो दसवीं कक्षा में भी परीक्षाएं होंगी, पहले हमारे समय में तो पहली कक्षा से परीक्षा होती थी और लोग फेल होते थे। अब हर साल परीक्षा होती थी तभी आप अगले क्लास में पहुंचते थे। वहां तो हम शिकायत नहीं करते कि परीक्षा क्यों ली जा रही है, वहां हम शिकायत नहीं करते। परीक्षा ली ही इसलिए जाती है कि अब ठीक है देखते हैं कि तुम इसके लायक हो कि नहीं हो। और जैसे ही आप उस समाज को या बोर्ड को या आपके सीबीएसई को लगता है कि नहीं ये इसके लायक है तो आपको अगले क्लास में पहुंचा देता है। तो हम जब हमारे एजुकेशन सिस्टम जो परीक्षा लेकर के हमें अपग्रेड करती जाती है तो आप क्या समझते हैं मित्रों कि प्रकृति को कोई हमारी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? क्या समाज को हमारी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि यह इसके लायक है कि नहीं है? या हमें सीधे सीधे वो अवार्ड देती चली जाए, डिग्री देती चली जाए और कल्पना करके देखे कि बिना परीक्षाओं के जब डिग्रियां मिलने लगेंगी तो आप एक मिनट के लिए सोच के तो देखिए कि उन डिग्रियों की वक्त क्या रह जाएगी, कौन पूछेगा उनको? आपको नहीं लगता कि वो कंकड़ पत्थर की तरह ही उन डिग्रियों की वैल्यू रहेगी जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है? तो दोस्तों ये जो प्रतिरोध होते हैं याद रखिए कि ये परीक्षाएं होती हैं। और ये जो प्रतिरोध है जब हम परीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं? आप अभी भी जब परीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं? आप अपने को कंसंट्रेट कर लेते हैं, एक तैयारी में लग जाते हैं, आप एक अनुशासन में लग जाते हैं, आपकी दिनचर्या बदल जाती है। आप देख रहे हैं ना आपका सब कुछ बदल जाता है, आपका इमोशनल जो भावनात्मक जगत है बदल जाता है, मानसिक विचलन पैदा होने लगती है, भटकाव आपके खत्म हो जाते हैं। ये सारी चीजें होती क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा देनी है और आपने फैसला किया है कि मुझे परीक्षा में पास भी होना है। आपका सब बदल गया। तो प्रकृति का अपने आपको प्रकृति अनुशासित कैसे रखे, कैसे किसी काम में लगाए रखे, जुटाए रखे, क्योंकि वो चाहती है कि आप परीक्षा में पास हो, तो अपने उपाय करती है, अलग अलग ढंग से उपाय करेगी और फिर आप उनसे टकराते हैं। वो टकराना ही परीक्षा देना है। आप उसका सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हार रहा हूं तो आप अपने को और ताकतवर बनाते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मित्रों अगर आप अपने हथियार नहीं डालते हैं उस प्रतिरोध के सामने तो होता क्या है? आप उससे जूझते हैं और जब आप जूझते हैं तो क्या होता चला जाता है आप सोच करके देखिए, आपकी अपनी शक्ति बढ़ती चली जाती है, आप ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होते चले जाते हैं, आप ताकतवर होते चले जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। और जिसे हम अनुभव कहते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार भी होता है अनुभव, वो अनुभव हमारा व्यापक होता चला जाता है, हमारा वह अनुभव गहरा होता चला जाता है। दोस्तों कल्पना करके देखिए कि यदि सच में हमारी जिंदगी बिल्कुल सीधी सपाट हो जाए, बिल्कुल सीधी सपाट, जहां कोई उतार चढ़ाव न हो, कोई प्रतिरोध न हो, कोई समर्थन न हो, तो सच में जिंदगी कितनी बदरंग हो जाएगी, कितनी बेस्वाद हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैंने जितनी भी बातें आपसे की हैं खासकर प्रतिरोध को लेकर, मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरी तरह से दंगल फिल्म के माध्यम से अब अपने दिमाग में लेकर आएं। आप देखें कि दंगल फिल्म में दो करेक्टर हैं जिनका सबसे जबरदस्त रूप से प्रतिरोध किया जा रहा है। एक है पिता महावीर फोगट और दूसरी है वो दोनों बहनें जो लड़की होने के बावजूद रेसलिंग में उतर रही हैं, पहलवानी में उतर रही हैं। आप देखिए कि समाज प्रतिरोध कर रहा है, घर वाले प्रतिरोध कर रहे हैं और यहां तक कि जो खेल की संस्थाएं हैं वहां भी आपको उस तरीके से समर्थन नहीं मिल रहा है जिस तरीके से समर्थन मिलना चाहिए, जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। और यहां तक कि आप एक प्रतिशोध की भावना आपको उनके कोच में भी दिखाई देगी। उनका मकसद ये नहीं है कि किस तरीके से इसकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, वहां एक अहम काम कर रहा है कि नहीं मैं हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी चलनी चाहिए, तो वहां अंदरूनी तौर पर एक अलग किस्म का प्रतिशोध आपको दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है मित्रों, दंगल फिल्म की खूबसूरती फिर वहां इस बात में उभरती है कि रास्ते चाहे कितने भी बंद क्यों न कर दिए जाएं, लेकिन वो मान करके चलता है कि वो खत्म नहीं होते। रास्ते बंद हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सफर का अंतिम क्षण आ गया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर रास्ता बंद है तो केवल मतलब यही है कि अब मुड़ो, घूमो, नया रास्ता तलाश करो, रास्ते हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से जब वो पटियाला के प्रशिक्षण केंद्र में काम कर रही है, मतलब प्रशिक्षण ले रही है, और वहां उनके पिता की एंट्री बंद है, इसके बावजूद किस तरीके से वो पिता, जो गांव में रहने वाले पिता हैं, जहां जिनको चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो किस प्रकार से अपनी बेटी को प्रशिक्षित करने का रास्ता निकालते हैं, कैसे सीडी लाते हैं, वो सारे चीजें आपने देखी हैं। मित्रों, मैंने ये विषय इसलिए चुना क्योंकि जब मेरे पास इस तरह के मेल आते हैं कि सर मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, बताइए मैं क्या करूं, तो मैं कभी कभी सोचने को विवश हो जाता हूं कि ये जो स्टूडेंट है, ये सिविल सर्वेंट बनने जा रहा है, दुनिया भर के लोग इसके सामने अपनी समस्याएं लेकर के आएंगे और इसे उसकी समस्याएं सुलझाना पड़ेगा, और ये खुद अपनी इस छोटी सी समस्या में इतना उलझा हुआ है कि कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है, उनको लग रहा है कि जैसे रास्ते बंद हो गए हैं, या ये इतना बड़ा प्रतिरोध दिखाई दे रहा है कि इस प्रतिरोध से उबरा ही नहीं जा सकता है। तो जो खुद में इतना कमजोर हो, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो, स्थितियों से जूझ नहीं सकता हो, अब उसे मैं क्या उत्तर दूं, आप ही बताइए मित्रों, मैं क्या उत्तर दूं। साथ फिर तो यही लगता है ना कि नहीं, जो मेटल है ये मेटल इस लायक नहीं है कि जो सिविल सर्विस में सच में जिसे जाने के लिए सोचना चाहिए। तो मित्रों, मैंने ये बात आप लोगों के सामने प्रतिरोध की रखी है, दंगल फिल्म के माध्यम से रखी है। अब थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी सोचिए कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, कैसे आप इसे और गहराई से समझ सकते हैं। मेरे जो कहने का मतलब था वो केवल यह है कि जब आपका विरोध होता है तो मान करके चलिए कि आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, और आप जितना बड़ा काम करेंगे विरोध उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा बड़ा विरोध इस बात का अपने आप में प्रमाण होता है कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।